ये है 9994 का पैसेक लास्ट हेडिंग दिया है अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल रखो, अपना टाइम परचिंतन में व्यस्त मत करो क्योंकि अपनी घोट तो नशा करे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, न यहाँ जिस्मानी बाप है और न जिस्मानी बच्चे बैठ समझ सकते हैं। समझाते हैं रूहानी बाप बैठ क्यों लगाया, माना आत्मा जो है ज्योति बिंदु आत्मा सुप्रीम शिव वो भी किसी तन में बैठता है, बिना बैठे समझा नहीं सकता। समझाते भी रूहानी बच्चों को क्योंकि जिस्मानी स्टेज में बैठने वाले बच्चे होंगे तो वो तो सामने बैठे हुए भी समझेंगे नहीं क्योंकि अपन को आत्मा समझने की प्रैक्टिस नहीं करते, मालूम ही नहीं है। भक्ति मार्ग में परमपिता परमात्मा शिव को यहाँ ही पूजते हैं, कहाँ भक्ति मार्ग में भी पूजते कहाँ हैं, पूजते तो इसी सृष्टि पर हैं, लेकिन पूजने वाले जानते नहीं हैं कि वो निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा होता है और वो किसी तन में आकर के वो पाठ बजाता है जिसके आकार से उसकी पूजा होती है। कौन सा पाठ बजाता है, पूजनीय कौन सा पाठ बजाता है, पवित्रता का, प्योरिटी का, एवर प्योर कहा जाता है। दूसरे देवताओं की इतनी पूजा नहीं होती जितनी बाप की पूजा होती है। क्यों, गांव-गांव में शहर शहर में सारे भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों में भी, ग्रीस में, मेसोपोटामिया में, सिंध हड़प्पा की खुदाई में जगह जगह वो लिंग मूर्तियां मिली हैं। इसे साबित होता है कि बहुत प्राचीन पूजा है, सबसे पुरानी पूजा है, सबसे पुरानी मूर्तियां मिलती हैं शिव और शंकर की। तो इतनी प्राचीन उपासना है, इस शक्ति पर ही उसकी पूजा होती आई है, लेकिन बुद्धि में ये नहीं आता है कि उसने प्रैक्टिकल कोई कार्य किया है तब पूजा होती है। बल बुद्धि में है कि ये हो करके गए हैं, इतना तो है क्या कि परमात्मा शिव शंकर या जो भी देवताएं और हैं वो इस शक्ति पर होकर गए हैं तो इनकी मूर्तियां हैं। जहाँ पर लिंग देखते हैं तो उनकी पूजा करते हैं, चाहे खुदाई में वो लिंग मिला हो या कोई प्राचीन मंदिर बना हुआ हो, प्राचीन स्थापना हो, पूजा करते हैं। ये तो समझते हैं शिव परम धाम में रहने वाला है, हो करके गए हैं, कौन समझते हैं
ये?
ये कौन समझते हैं? परम धाम में रहने वाला दुनिया भी समझते हैं, दुनिया भी लोग शिव परम धाम में रहने वाला है ये दुनिया भी लोग समझते हैं, दुनिया भी लोग, दुनिया भी लोग तो नहीं समझते, तो किसकी बात हुई,
बच्चों की बात,
बच्चों में भी कौन से बच्चे हैं? यह तो समझते हैं शिव परम धाम में रहने वाला है, कौन से बच्चे, दुनिया तो नहीं समझती कि परम धाम में रहने वाला है, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारी तो समझते हैं क्या, किसी को परम धाम में रहने वाला है, हो करके गए हैं, पास की बात समझते हैं। कौन? शिव जो है वो ब्रह्मा के तन में आए और होकर के गए, होकर के गए हैं, इसलिए उनका यादगार बनाकर पूजते हैं। अच्छा, तो ब्रह्मा में होकर के गए हैं तो क्या ब्रह्मा की पूजा होती है? नहीं होती। अच्छा, ब्रह्मा में होकर के गए हैं तो ब्रह्मा का जो रूप है वो लिंग का रूप बनाया जाता है? ब्रह्मा का लिंग रूप भी नहीं बनाया जाता, फिर कैसे कहते हैं कि उनका यादगार बनाकर पूजते हैं? जिस समय याद किया जाता है तो बुद्धि में जरूर आता है। कौन? वो ब्रह्मा को भी याद करते हैं तो उनकी बुद्धि में बिंदु आता है। कब आएगा बिंदु? सिर्फ याद करते हैं कि बिंदु, ज्योति बिंदु शिव ब्रह्मा के तन में आया तो आकर के कुछ करके जाएगा तभी तो याद किया जाएगा, परिवर्तन करके जाएगा तभी याद किया जाएगा, ऐसे ही याद किया जाएगा। समझते हैं, निराकार है जो परम धाम में रहने वाला है। कौन समझते हैं? ब्रह्मा कुमार कुमार ही समझते हैं कि निराकार ज्योति बिंदु है, परम धाम में रहने वाला है, उनको शिव कहकर के पूजते हैं, मंदिर में जाके माथा टेकते हैं। कहाँ टेकते हैं माथा? माथा कैसे टेकते? माथा टेकने का मतलब क्या हुआ? बुद्धि से सरेंडर करते हैं। किसको? शिव को। शिव तो वो ज्योति बिंदु है, जिस बिंदु का बड़ा आकार शिवलिंग बनाया गया। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी मंदिर में जाते हैं क्या? नहीं जाते। मंदिर माने यादगार, यादगार माने जहाँ वो कार्य कर चुका है वहाँ यादगार बनाई जाती है। तो माउंट आबू में भी तो शिवलिंग यादगार बनाई गई है, जाते तो है ना? जो यादगार ज्योति बिंदु बनाई गई है जाते हैं तो बुद्धि तो झुकती है, लेकिन माथा टेकते हैं पर उन पर दूध भी क्यों चढ़ाया जाता है, फल जल आदि क्यों चढ़ाया जाता है? दूध किसे कहते हैं? दूध होता है परमात्मा गौ मुख में आकर के प्रवेश करके जो कुछ सुनाता है वो है गाय का दूध, जो उसके मुख से निकलता है, क्योंकि कन्याएं पवित्र होती हैं। कन्याएं माताएं जो प्योरिटी में ज्यादा विश्वास रखने वाली हैं भारत की, उनके मुख से जब परमात्मा का ज्ञान सुनाया जाता है तो प्योरिटी होती है, उसको दूध कहा है। फल चढ़ाए जाते हैं। फल क्या चीज है? वृक्ष जब पूरा होता है, संपन्न होता है, तो उसमें बीज परिपक्व स्टेज में आ जाता है। जैसे सारी सृष्टि का मनुष्य जो बीज रूप में है, पहला पहला वो है प्रजापिता। प्रजापिता यज्ञ के आदि में इस सृष्टि में आता है, परमात्मा उस तन में प्रवेश करके ज्ञान का बीज बोता है और वो अपने अस्तित्व को ब्राह्मण परिवार के लिए मिटा देता है। दाना जब तक धरणी में मिल नहीं जाता है तब तक वो सरसब्ज पौधा तैयार नहीं होता। मनुष्य भी लौकिक संसार में भी मनुष्य अपनी जो सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शक्ति है, मांस मज्जा खून, ये श्रेष्ठ नहीं है। इनमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ शक्ति है वीर्य। उस वीर्य को नष्ट कर देता है। काहे के लिए? परिवार को सरसब्ज करने के लिए। तब सृष्टि उत्पन्न होती है। तो परमात्मा भी सृष्टि पर जब आता है तो जिस तन में प्रवेश करता है वो तनधारी अपने तन को, मन को, धन को, समय, संपर्क, सब प्रकार की बाजी लगा करके उस ब्राह्मण परिवार को सरसब्ज करने में अपना सब कुछ फाहा कर देता है। यज्ञ के आदि इसलिए कहावत है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुजार होता है। तो पौधा तैयार हुआ, पौधा बड़ा होता है, परिपक्व स्टेज में पहुंचता है, तब उसमें से फूल आता है। पहले कलियां, कलियों से फूल बनते हैं, फूल से फिर फल बनता है, और वो फल भी जब परिपक्व स्टेज में पहुंचता है तब उसमें बीज पहुंचता है। वो बीज जैसे शुरुआत में था वैसा ही बीज पहले पहले फिर आ जाता है। इसलिए लौकिक व्यवहार में भी कोई वृक्ष से जब पहला फल आता है, चाहे पौधा हो चाहे वृक्ष हो, उस फल का जो पहला पहला बीज तैयार होता है वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अपने लौकिक व्यवहार में भी परंपरा चली आई है जो बड़ा बच्चा होता है वो राजा ही का हकदार होता है, छोटों और मझलों को राजा ही नहीं दी जाती है, बड़े बच्चों को ही हमेशा राजा ही दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो लंबे समय की मेहनत प्योरिटी के संग्रह से पैदा हुआ पहला बच्चा होता है। दूसरे बच्चे उतने लंबे काल की प्योरिटी से पैदा नहीं होते। तो प्योरिटी जो कि दुनिया में सारे कार्य करती है, उस लंबी अवधि की प्योरिटी से पहला हुआ पहलौटी का जो बच्चा है, पहले पहले तैयार होने वाला जो बीज है, वो नई शक्ति बनाने के कार्य में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो उसको कहते हैं फल से निकला हुआ पहला पहला बीज, वो अर्पण किया जाता है। किस पर? शिव के ऊपर। दूध अर्पण करते हैं, फल अर्पण करते हैं, जल भी अर्पण करते हैं। जल भी कैसा होता है? लोटी जब चढ़ाते हैं तो उसमें जल ज्यादा होता है और दूध थोड़ा होता है। माना जो अल्पज्ञ आत्माएं हैं, जिन्होंने थोड़ा सा ज्ञान लिया है, बाकी सारा पानी है। पानी को गिलोया जाए तो मक्खन नहीं निकलेगा, और दूध को गिलोया जाए तो मक्खन निकलेगा। क्या मतलब हुआ? कि जो मन के अंदर जो मंथन चलता है और मंथन से पैदा होने वाली जो चीज होती है उससे सार निकलता है, जिसे मक्खन कहते हैं, पावरफुल चीज निकलती है। सिर्फ अगर पानी है, पानी से कुछ नहीं बनेगा। तो पानी की गंगा और जो ज्ञान की गंगा है उसमें फर्क क्या हुआ? ज्ञान की गंगा का फर्क ये हुआ कि परमात्मा ने सृष्टि पर आकर के जो ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान को प्योरिटी में, प्योरिटी के बर्तन में रख करके जब उसका आलोड़न किया जाता है, मनन चिंतन मंथन किया जाता है, उससे जो पैदाइश होती है, जो मनन चिंतन मंथन से निकला हुआ सार निकलता है ज्ञान का, वही गीता ज्ञानामृत कहा जाता है। ऐसे गीता ज्ञानामृत को निकालने के निमित्त बनने वाली जो आत्माएं हैं, वो नंबरवार हैं। कोई ज्ञान को सुनती है, मनन चिंतन मंथन बिल्कुल नहीं करती। तो मनन चिंतन मंथन बिल्कुल नहीं करेंगी तो जैसा सुना है बस उतना ही सुना सकेंगी। उसके गुह्यार्थ को पकड़ नहीं सकती। जब गुह्यार्थ को नहीं पकड़ेंगी तो सुनने वाले जो हैं वो भी उनके वाइब्रेशन को नहीं पकड़ सके। परमात्मा क्या कहना चाहता है, किस गुह्यार्थ से कहना चाहता है, ऊपर ऊपर का ज्ञान उठा लेंगे, जैसे किसी से श्लोक को रट लिया हो। भक्ति मार्ग में रट्टा लगाते हैं ना, कोई मंत्र लेंगे और सुबह से लेकर शाम तक उसको जपते रहेंगे। रामायण पढ़ेंगे 7 दिन तक बस रामायण का रट्टा लगाते रहेंगे। गुरु ग्रंथ साहब पढ़ेंगे 6-7 दिन उसको बस रटते रहेंगे। अर्थ की गहराई में नहीं पहुंचेंगे, उसका निष्कर्ष क्या है। तो पानी का और दूध का ये अंतर होता है। पानी उसे कहते हैं जो सुना है, बस सुना हुआ जीव का त्यों पढ़ लेना और दूसरों को सुना देना, गुह्यार्थ को न समझना। और दूध किसे कहते हैं, और दूध में से निकला हुआ मक्खन किसे कहते हैं। परमात्मा ने जो कुछ सुनाया उस सुनाए हुए को प्योरिटी के पवित्र बर्तन में रख करके और उसका जो आलोड़न हुआ है, उस आलोड़न से जो मक्खन निकला, उस मक्खन की गहराई को हम पकड़ें। तो एडवांस नॉलेज वो एक प्रकार से मंथन है, मंथन का निकला हुआ निष्कर्ष है। लेकिन शिव के ऊपर तो जल भी चढ़ाते हैं, दूध भी चढ़ाते हैं, दूध और पानी दोनों मिलाकर के भी चढ़ाते हैं, और फिर उसके ऊपर मक्खन भी चढ़ाते हैं। मक्खन से उसका अभिषेक भी करते हैं, घी से अभिषेक करते हैं। मतलब क्या हुआ, शिव के ऊपर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं भी अर्पण होती हैं, और नाचीज जो है जिन्होंने ज्ञान में आकर कोई पुरुषार्थ खास नहीं कर पाया, विषैले की विषैले ही बने रहे, आकर के फूल बन करके रह गए, वो भी उनके ऊपर अर्पण किए जाते हैं। वो आते सब कहाँ से हैं, सारे कहाँ से आते हैं, लौकिक दुनिया से नहीं आते हैं, सारे ब्राह्मण परिवार से आते हैं, कुखवंशावली ब्राह्मणों में से आते हैं, वीकेज में से आते हैं। तो फल आदि ये सब चढ़ाते तो हैं, परंतु जिस पर चढ़ाते हैं वो तो जड़ है। बीके में किस पे चढ़ाते हैं, इतने भी जो अर्पण होते हैं उनको किस पर चढ़ाते हैं,
ब्रह्मा को।
हाँ, जो ब्रह्मा का चित्र है उसके सामने ले जाके बैठा लेते हैं, वो भी जड़ हो गया। प्रकाशमणि दादी को बैठाया, वो भी जड़तमय बुद्धि, अर्थ उसका कुछ भी नहीं समझते। मुरली पढ़ लेंगे, प्रकाशमणि दादी में ये विशेषता है, पूरी मुरली जैसी पढ़ेंगी सुनाएंगी उनको, मुरली उनको हाथ से छीन लो रख लो और उनसे कहो कि क्या क्या बाबा ने सुनाया, तो एक एक महावाक्य जो है सारा ही जो कत्यो सुना देंगे, सारा याद रह जाता है। लेकिन गुह्यार्थ बुद्धि में नहीं बैठता। तो जड़तुमयी बुद्धि कहेंगे या चैतन्य बुद्धि कहेंगे, कैप्टन क्या करता है,
जैसा सुनाया
जो भी सुनाया जाएगा वो जो का त्यों रिपीट कर देगा। लेकिन टैप रिकॉर्ड जड़तुमयी है, कैसे तो जड़त 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 से भरी पूरी है, या चैतन्य कहेंगे
जड़तुमयी
है, सार क्रिएट नहीं कर सकता, नई दुनिया नहीं बना सकता। तो बताया कि जिस पर चढ़ाते हैं वह तो जड़ है, जो भी अर्पण हुए और जिस पर भी चढ़ाए गए वो तो जड़ है, जड़ की ही भक्ति करते रहते हैं। भक्ति भावना किसको अर्पण करेंगे, शिव को नहीं, जड़ को। शिव को कहां अर्पण हुआ
है,
इनके प्रैक्टिकल में करते क्या है, देते किसको है। प्रैक्टिकल में जो भी अर्पण करते हैं वो देते किसको है, जड़त को देते हैं ना, चैतन्य तक तो नहीं पहुंचा। चैतन्य तक कब पहुंचेगा? चैतन्य तक तब पहुंचेगा कि वो चैतन्य जिस मुकर्र रथ में आकर के सृष्टि का कल्याण करता है, सृष्टि का परिवर्तन करता है, तब पहुंचेगा। तो वो तो जड़ है, जड़ की भक्ति करते हैं। अभी तुम जानते हो वह है चैतन्य, तुम जानते हो वो जड़ नहीं है, वो चैतन्य है। चैतन्य माना, चैतन्य की भी परिभाषा मुरली में बताइए। नहीं, चैतन्य की परिभाषा बताइए। बोलता और चलता, चलता भी हो और बोलता भी हो, उसको चैतन्य कहा। तो प्रकाशमणि दादी भी तो बोलती है और चलती है। वो बोलती चलती नहीं है क्या? फिर हाँ, उनकी आत्मा चैतन्य है। शिव को ये कहे कि मुकर्रर रथ है, आदि में भी था अंत में भी रहेगा, ऐसा नहीं है। वह है चैतन्य, उनका निवास स्थान परमधाम है। चैतन्य का निवास स्थान परमधाम है। परमधाम में तो बताया आत्मा बिंदु जो जड़वत रहती है, चैतन्य होकर के तो वहां रहती नहीं। फिर परमधाम निवास स्थान है ये कैसे कह दिया? इसका मतलब ये हुआ कि साकार तन में रहते हुए भी स्टेज से मन बुद्धि से कहाँ का रहने वाला है? ऊंचते ऊंचे स्टेज में रहने वाला है। वो लोग जो पूजा करते हैं तो बुद्धि में रहता है कि परमधाम निवासी है। कौन लोग पूजा करते हैं? वह लोग जब जड़ चित्र के सामने बैठते हैं तो जिसके प्रति पूज्य भाव रहता है तो बुद्धि में रहता है कि परमधाम निवासी है। कौन है परमधाम निवासी? वो ज्योतिबिंदु शिव परमधाम निवासी है, हो करके गए हैं, तभी यह चित्र बनाए गए हैं।
पर बाबा ये मुझे तो जो है ना, जब चली थी उस टाइम तो ये सिचुएशन नहीं थी ना, उस टाइम भक्तों की कोई नहीं।
नहीं नहीं नहीं,
जब वो चार सार या बहन वहाँ चली होगी
उस टाइम भी दादा लेखराज के तन में शिव को जो मानते थे वो भी भक्तों की तरह ही मानते थे। उन्होंने असल तत्व बात को नहीं पहचाना कि शिव जो दादा लेखराज में प्रवेश करता है वो विश्व को परिवर्तन करने वाला शिव का साकार स्वरूप नहीं है। उनकी बुद्धि में भी हाँ सात्विक बुद्धि से की हुई पूजा थी, लेकिन असलियत में अगर ये कहें कि वो भक्त नहीं थे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो भी भक्ति थी। दादा लेखराज ब्रह्मा ने स्वयं जो कुछ भी किया वो स्वयं भी एक प्रकार की भक्ति थी। अगर भक्ति उनकी पूरी हो गई होती फिर तो उनको सूक्ष्म शरीर के बंधन में नहीं आना पड़ता। वो सोल अभी भी अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा वो भक्ति के संस्कार पूरे कर रही है। वो संस्कार बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे तो न सूक्ष्म शरीर रहेगा न साकार शरीर रहेगा।
उस टाइम भी भक्ति थी
क्योंकि परमात्मा का परिवर्तन करने वाला प्रैक्टिकल स्वरूप वो पूजनीय स्वरूप था नहीं ना। वास्तव में जिसकी पूजा होती है संसार में, ब्रह्मा की रूप की तो पूजा नहीं होती।
परिवर्तन स्वरूप नहीं था, स्थापना का स्वरूप था।
स्थापना सिर्फ ब्राह्मणों की, ब्राह्मणों की स्थापना से राजा ही स्थापन नहीं हुई, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, लक्ष्य सिद्धि नहीं हुआ, लक्ष्य अधूरा रह गया तो पूजा कैसे होगी? दुनिया तो उसको मानेगी जिसने लक्ष्य सिद्ध कर लिया हो। सिद्ध पुरुष को दुनिया मानेगी, सिद्धि प्राप्त नहीं हुई तो फिर संसार में परमात्मा के स्वरूप की असली प्रसिद्धि कैसे हो जाएगी? इसलिए ब्रह्मा के रूप की पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं बनती, मूर्तियां नहीं बनती। तो ये चित्र बनाए गए हैं जिनकी पूजा की जाती है यह चित्र कोई शिव नहीं है क्या? जिनकी पूजा की जाती है वो चित्र क्या कोई शिव है? दादा लेखराज का जो चित्र पूजा जा रहा है उस चित्र को सामने रख करके अर्पण कर देते हैं, क्या वो शिव है? अच्छा वो चले गए, उनकी जगह कुमारका दादी को निमित्त मान करके अर्पण कर देते हैं फल फूल, तो क्या वो शिव है? नहीं है, उनकी प्रतिमा है। किनकी? दुनिया में जो शिवलिंग की पूजा करते हैं वो प्रतिमा है। दादा लेखराज में जो भाव बैठा हुआ है वो भी प्रतिमा है, और परमात्मा शिव जिन्हें 108 विशेष वस्त्रों में आकर के सेवा का कार्य करता है संसार में, वो भी एक प्रकार के शिवलिंग कहे जाते हैं। 108 नहीं, 9,00,000 शिवलिंग है। उस आधार पर मुकर्रर तो एक ही है, लाखों शालिग्राम बनाते हैं, रुद्रेगी रखते हैं, सुबह को बनाते हैं शाम को तोड़ देते हैं, तो यादगार कहाँ की हुई? इसी संगम युग में वो निराकारी स्टेज को वो आत्माएं प्राप्त करती है, और जब संगम युग पूरा होता है तो वो निराकारी स्टेज खलास हो जाती है। शूटिंग पीरियड में, तत्व प्रधान पीरियड में वो स्टेज बनती है, तामसी स्टेज वो स्टेज बिगड़ जाती है। तो वह चित्र कोई शिव नहीं है, उनकी प्रतिमा है। वैसे ही देवताओं को भी पूजते हैं, उनके भी जड़ चित्र हैं, चैतन्य नहीं है। परंतु वह चैतन्य जो थे वो कहां गए? ये तो समझते ही नहीं है, कहां गए? हम तो जानते हैं कहां है। जो चैतन्य थे वो कहां गए वो तो नहीं समझते, हम तो समझते हैं कहां गए। अरे दुनिया वाले नहीं समझते, ब्राह्मणों की संगमी भी दुनिया वाले वो लोग नहीं समझते, लेकिन हम तो समझते हैं कहां गए।
देवताओं को भी नहीं समझते,
वो कहां समझते हैं? रामकृष्ण कहां गए, राम कहां गए, कृष्ण कहां गए, राधा कहां गई, जगदम्बा कहां गई, वो समझते हैं? आप समझते हैं? तो वैसे ही देवताओं को पूजते हैं, जड़ चित्र हैं, चैतन्य नहीं है, परंतु वह चैतन्य जो थे वो कहां गए ये नहीं समझते हैं। जरूर पुनर्जन्म लेकर के नीचे आए होंगे, उन्होंने पुनर्जन्म लिया होगा और पुनर्जन्म लेते लेते नीचे स्टेज में आए होंगे।
उनको ये तो पता है कि मामा खाली कर रही है, ये पता नहीं है।
लेकिन कहाँ है? वो तो दुनिया भी जानती है परमात्मा शंकर जो ऐसे में कहीं कार्य कर रहा है, वो तो कहते हैं सर्वव्यापी होकर कार्य कर रहा है। जब नहीं जानते हैं तो यही कह देंगे,
पर ये तो माननी पड़ेगी ना कि
प्रैक्टिकल में कहाँ कार्य कर रहे हैं।
तो जो भी बीते हैं हम या वो भी वो यही देवता बनेंगे।
कौन? रामकृष्ण कहाँ, राधा कहाँ, जगदम्बा कहाँ?
तो बन गए ना सुख,
तो है कहाँ? सवाल तो ये है, यहाँ तो बाबा सवाल ये कर रहे हैं कहाँ गए, कहाँ है वो मालूम है उनको? अगर मालूम नहीं है तो वहां तक पहुंच सकते हैं?
वो गुजरात के कांसर को उठाना आती, ये प्रसाद जो जो देवता बनने वाली आत्माएं हैं, राम की कृष्ण की और जो भी है,
हाँ,
तो यज्ञ खुला हुआ ना जी,
हाँ यज्ञ है,
तो उसमें फिर वो प्रसाद कर रही हैं।
कहाँ है, कौन से शरीर में,
ये कहाँ चाहिए
शरीर? ये बुद्धि में होना चाहिए ना, कौन सी शरीर में?
राम की आत्मा
कहाँ है, कृष्ण की आत्मा कहाँ है, राधा की आत्मा कहाँ है, जगदम्बा की आत्मा कहाँ है, वो बुद्धि में तो होना चाहिए। यज्ञ के आदि में जो माताएं परवरिश कर रही थी यज्ञ की, वो माताएं कहाँ है? ये बात अगर यही बुद्धि में नहीं बैठी है कि वो शरीरधारी कहाँ है, तो जब जो मुखिया है उनका ही पता नहीं है 84 जन्मों का, तो हमारे 84 जन्म कैसे डिक्लेयर होंगे? हमारे 84 जन्मों का मनन चिंतन मंथन करके हम उसका जो तालमेल है वो कैसे निकालेंगे? हमारे स्वरूप का पता कैसे लगेगा? हु एम आई? ना हम पहले सीढ़ी को प्रत्यक्ष कर सकेंगे कि पहले जन्म में हम कौन से देवता थे। तो वह आत्मा कोई न कोई शरीर में तो जरूर है, पुनर्जन्म तो लेना ही है। तुम पूजते हो उनको जो पहले पहले शरीर वाले थे, तुम और किसी को नहीं पूजते हो क्या? जो फर्स्ट था जिसमें परमात्मा ने पहले पहले प्रवेश किया, तुम उनको पूजते हो। माना एडम ईव को तुम मानते हो और दुनिया में किसी को तुम मानने वाले नहीं हो, तुम सिर्फ माता पिता को मानते हो। सारी सृष्टि में तुम्हारे लिए कौन है उचित हूँ? तो जो पहले पहले शरीर वाले थे तुम पूजते ही हो, सतवी लक्ष्मी नारायण को पूजते हो, किसको पूजते हो? जो पहला पहला लक्ष्मी नारायण बना उसको पूजते हो। इस समय तुम्हारा ख्याल चलता है इस बात पर, जो नॉलेज बाप देते हैं उस पर ख्याल कोई शास्त्रों की बातों पर नहीं चलता। दीदी दादी दादा है जो कुछ कहते हैं उनकी बातों पर ख्याल नहीं चलता। तुम्हारा ख्याल किस पर चलता है? जो बाप नॉलेज देते हैं उन बातों पर तुम्हारा ख्याल चलता है। तुम समझते हो जिस चित्र की पूजा करते हैं वह पहले नंबर वाला है। दुनिया में भी भक्तों भक्त लोग जिस चित्र की पूजा करते हैं विशेष, कौन सा चित्र है? शिवलिंग की पूजा करते हैं ना। मूर्तियों में अगर पूजा करते हैं तो सबसे ज्यादा मूर्तियां जो मिली हैं खुदाइयों वगैरह में, नग्न मूर्तियां शंकर की मिली हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो तुम समझते हो जिस चित्र की पूजा करते हैं वह पहले नंबर वाला है। एडम जब वो निराकार स्टेज में है तो शिवलिंग कहा जाता है, जिसकी सोमनाथ मंदिर में स्थापना की गई। लिंग है शरीर की यादगार, जिसको अपनी कर्मेंद्रियों का भान नहीं है, जैसे कर्मेंद्रियां काट दी गई है तो लिंग रूपी क्या रह गया? धड़ रह गया, सिर्फ लिंग मात्र रह गया। लेकिन उसमें प्रवेश कौन है? हीरा ज्योति बिंदु,
उसकी पूजा होती है।
उसकी पूजा होती है शिवलिंग की।
जो ये दो तीन चार नंबर पे है,
दो तीन चार नंबर कौन?
ये जो आठ नारायण हुए सब, ये तो
यहाँ तो कहा तो तुम पहले नंबर को मानने वाले हो सूर्यवंशी।
नहीं नहीं, उनकी पूजा इस मंदिर में होती है, जो
वो तो दूसरे भक्त लोग करते हैं। भक्तों में भी तो भक्त बेविचारी भक्ति हो गई ना। एक है बेविचारी भक्त, एक की ही पूजा करता है, और एक है अनेकों की पूजा करता है, तो ज्यादा शक्ति कौन सी भक्त में होगी? अभी विचारी भक्त में ज्यादा शक्ति होगी ना, वो ज्यादा पावरफुल बन गया ना। प्योरिटी ज्यादा किसमें हुई? ज्यादा पवित्र बुद्धि किसकी हुई? जो एक को मानने वाला है। तो तुम समझते हो वह चित्र जिसकी पूजा करते हैं वह पहले नंबर वाला है। ये लक्ष्मी नारायण चैतन्य थे, यहाँ ही भारत में थे, अभी नहीं है। मनुष्य ये नहीं समझते हैं कि वह पुनर्जन्म लेते लेते भिन्न में नाम रूप लेते हुए 84 जन्मों का पार्ट में जाते। माना जो पहले पहले नंबर वाले थे वो 83 जन्म लेने वाले नहीं है, या उनसे कम जन्म लेने वाले नहीं है। कितने जन्म लेने वाले? 84 जन्म लेने वाले। ये किसके भी ख्याल में नहीं आता है क्या कि जिन लाखों सालिग्रामों की पूजा करते हैं वो 84 जन्म लेने वाले हैं? सिर्फ अनेक जन्म लेने वालों की पूजा होती नहीं है वास्तव में। सतयुग में थे तो जरूर, परंतु वो अब नहीं है। ये भी किसको समझ में नहीं आता है। अभी तुम जानते हो ड्रामा के प्लान अनुसार फिर चैतन्य में आएंगे जरूर। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, इसमें प्रत्यक्षता उनकी जरूर होगी चैतन्य रूप में। मनुष्यों की बुद्धि में ये ख्याल ही नहीं आता है कि वो अप्रत्यक्ष होने वाले हैं, चैतन्य में आने वाले हैं। बाकी इतना जरूर समझते हैं कि यह थे, अब इनके जड़ चित्र हैं। किनके? शिव के, लक्ष्मी नारायण के जड़ चित्र। परंतु है चैतन्य कहाँ चले गए, ये किसकी बुद्धि में नहीं आता है। मनुष्य जो 84 लाख पुनर्जन्म कह देते हैं, यह भी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि 84 जन्म लेते हैं सिर्फ, 84 लाख जन्म मनुष्य आत्मा नहीं लेती है। अब रामचंद्र की पूजा करते हैं, उनको यह भी पता नहीं है कि राम कहाँ गया। किनको?
राम फेल हो गया और जाके वहाँ बन जाएगा।
राम फेल हो गया,
राम फेल हो गया और वो आगे जाके ना देता में राजा बन जाएंगे।
तो तुम नहीं राजा बन जाओगे?
मैं बात
त्रेता में वो नहीं राजा बन जाएंगे, वही बनेंगे। वो फेल नहीं होते, सारे फेल होते
हैं, सारे होते हैं।
जब सारे फेल होते हैं तो राम के लिए विशेष क्यों? कितना पत्थर मारने वाली बात होती है कि राम ही फेल हो गया। माया तो किसी को नहीं छोड़ती,
राम का नाम आता है कि राम फेल हो गया।
तो दूसरों की फेल होने की बात कहने में बहुत मजा आता है।
राम का नाम आता
है, फेल तो सारे ही होते हैं। अब रामचंद्र की पूजा करते हैं, उनको ये भी पता नहीं है राम कहाँ गया, लेकिन हमको तो पता है, उनको नहीं पता है। हमको तो ये पता चल गया कि बाबा कहते हैं कि वो यही है, माना हमारे ब्राह्मण परिवार में भी कहीं न कहीं राम वाली आत्मा है जरूर। तुम जानते हो कि राम की आत्मा तो जरूर पुनर्जन्म लेती रहती है, यज्ञ के आदमी अगर उसने शरीर छोड़ दिया तो अब ऐसे नहीं है कि वो कोई बाहर की दुनिया में चली जाएगी, वही रमण करेगी। नहीं, ब्राह्मण बनकर के जिसने एक बार शरीर छोड़ा है तो फिर कहाँ जन्म लेना है? ब्राह्मण परिवार में ही जन्म लेना है। उसका पूर्वजन्म का जो पुरुषार्थ है वो अगले जन्म में ऐड हो जाता है, वो एडवांस पार्टी बन जाती है। पुरुषार्थ ऐड होगा तो एडवांस पार्टी बनेगी। तो तुम जानते हो कि राम की आत्मा तो जरूर पुनर्जन्म लेती रहती है, यहाँ इम्तान में नापास हो गई। इम्तान तो शुरुआत से ही होते हैं ना, बच्चा स्कूल में भेजा जाता है, तिमाही इम्तान होता है, मंथली एग्जाम होता है, छमाही इम्तान होता है, फिर फाइनल भी होता है। पहले कहेंगे बेसिक नॉलेज में परीक्षाएं होती है, फिर कहेंगे हायर नॉलेज में परीक्षाएं होती है, फिर हायर नॉलेज में भी ऊंचे से होती है एजुकेशन होती है, उसमें भी परीक्षाएं होती है। तो लास्ट परीक्षा में क्या फेल हो गया कहेंगे? शुरुआत में तो बेसिक नॉलेज ही थी, शुरुआत में तो वही पुरानी गीता संस्कृत वाली, उसके अर्थ करके और सत्संग होता था, ओम की ध्वनि का उच्चारण होता था। परंतु कोई न कोई रूप में वो आत्मा होगी तो जरूर, यहाँ ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। कौन, किसके लिए बोला? राम वाली आत्मा भी यहाँ ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। ऐसे तो हमको ये बताया जाता है आत्मा आत्मा भाई भाई, तुम हो आत्मा, हम है आत्मा, आपस में भाई भाई गीत गाते रहते हैं। राम वाली आत्मा के प्रति इतनी नफरत क्यों?
हमें पता पड़ा लेकिन
हमें पता पड़ गया है कि इतनी नफरत क्यों है, क्योंकि वो है सूर्यवंशी। सूर्यवंशी होने के कारण जो 63 जन्मों का हिसाब किताब है, उसका नक्शा, उसका खाका हमारी बुद्धि में खींच जाता है कि वो सूर्यवंशी किस तरह है। पक्का भारतवासी है, पक्का भारत का पार्ट बजाने वाला है, भारत में ही भगवान आते हैं। पहले सूर्य को ही ज्ञान सुनाया जाता है, वो सूर्य हमारा बाप है, वो देवता है, परमात्मा नहीं है। सूर्य देवता ही नमा, चंद्र देवता ही नमा, देवता ही तो कहा जाता है, परमात्मा तो उसमें प्रवेश करता है। तो इतना नाम बाला है राम का, वो कितना नाम बाला करते हैं, वो सिर्फ कहते हैं क्या राम फेल हो गया वो, ये इतना नाम बाला। लेकिन बाबा यहाँ क्या कहते हैं, इतना नाम बाला है राम का तो जरूर आएंगे ना, इतना नाम बाला है तो वो छुपा रुस्तम बाद में खुलेगा ना। जिस आधार पर नाम दुनिया में संसार में बाला होता है, कहाँ नाम बाला है, राम का नाम ज्यादा बाला कहाँ है, यानी भारतवर्ष में, भारतवर्ष में भी कहाँ ज्यादा बाला है,
यूपी
में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में राम को जितना मानते हैं उतना और किसी देवता को नहीं मानते, सारे उत्तर प्रदेश में रामायण का बोलबाला है।
नाम भी राम चाय के पीछे
हम मिलेंगे जुलेंगे तो भी क्या कहेंगे, जय राम जी की
जय राम,
माला घुमाएंगे तो भी क्या कहेंगे, राम 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 राम, जैसे हर मन के में राम ही घुसा हुआ है। तो इतना नाम बाला है राम का तो जरूर आएंगे ना, घोषणा कर दी, ऐसे नहीं फेल हो गया सही छोड़ के चला गया तो वो चला ही जाएगा, नहीं अगले जन्म में आएंगे ना, पुरुषार्थ करेंगे ना, उनको नाली लेनी पड़ेगी, तब तक उनका कल्याण नहीं हो सकता। जब तक वो पूर्व जन्म में शरीर छोड़ा है, जिस अर्थ उन्होंने कार्य किया था वो कार्य जरूर अगले जन्म में आकर के करेंगे, उनको नाली लेनी पड़ेगी। माना ये नॉलेज जब परिपक्व स्टेज में पहुंचे, बेसिक नॉलेज ब्रह्मा बाबा जब शरीर छोड़ने की स्टेज पर आ जाए, उस समय तक की नॉलेज उनको सारी लेनी पड़ेगी। अगर वो नॉलेज नहीं लेंगे तो उनका कल्याण होने वाला नहीं है। अभी अभी कुछ मालूम नहीं पड़ता है, अभी माने कभी लेनी पड़ेगी, वो तो भविष्य की बात बताई, लेकिन अभी कुछ मालूम नहीं पड़ता है। अभी माने कभी जिस समय मुरली चल रही थी, बाबा जीवित थे उस समय ये पता नहीं पड़ रहा था कि वो आत्मा कहाँ है, लेकिन जैसे ही बाबा शरीर छोड़ेंगे उसी वर्ष में ये निश्चित है कि वो आत्मा जो है वो अपने स्वरूप को
नहीं
पहचानेगी, वो इस परिवार में आएगी। तो अभी वो बात को नहीं मालूम पड़ता है तो उस बात को छोड़ देना पड़ता है। अभी वो बात क्यों छोड़ देनी पड़ती है, फिर राम की आत्मा से हमें क्या लेना देना, हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम पाएंगे, राम की आत्मा पुरुषार्थ करेगी तो राम की आत्मा पाएगी। तो उस समय तक के लिए तो ये बात ठीक थी कि उस समय नहीं मालूम पड़ता था क्योंकि वो आत्मा उस समय ज्ञान में आई नहीं थी दोबारा, तो उस बात को छोड़ना।
उस समय राम की आत्मा का त्रेता वाला पार्ट समझा रहे थे ना वो, तो क्योंकि त्रेता में राम बनता है वो, इसलिए वो सत्युगी या सूर्यवंशी राम का तो उनको संकल्प ही नहीं आया।
चलो ठीक है, फेल हो गया तो जो फेल हो जाते हैं वो त्रेता में जाके चंद्रवंशी बनते हैं, वो तो सभी बनते हैं, कोई ऐसा सत्युग का देवता नहीं है जो त्रेता में जाकर के चंद्रवंशी न बनता हो, तो वो तो एक सामान्य बात हो गई। लेकिन यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं, जब ये बात आती है ना तो राम की बात तो कहती है परचिंतन है, बाबा ने तो बोला है हमें उन बातों में जाने से क्या मतलब, तो परचिंतन हो गया, हम अपनी आत्मा का चिंतन करें तो हमारा कल्याण होगा। तो उसका यहाँ जवाब दिया गया कि अभी छोड़ देना पड़ता है, क्यों, क्योंकि अभी ये मालूम ही नहीं पड़ता कि वो आत्मा कहाँ है, तो छोड़ देना पड़ता है। इन बातों में जाने से टाइम वेस्ट हो जाता है, अभी अभी टाइम वेस्ट क्यों हो जाता है
पता ही नहीं,
अभी नहीं मालूम पड़ रहा है तो टाइम वेस्ट हो जाता है, और जब ये मालूम पड़ जाए क्या,
ये वो राम वाली आत्मा,
वो जो बीज बोने वाला जो पिता है जो सबका बाप है नॉलेज में, जब उसका पता पड़ जाए फिर तो उसका चिंतन करना पड़े ना। तो इन बातों में अभी जाने से टाइम वेस्ट होता है, इससे तो क्यों ना अपना टाइम सफल करें, आत्मा की याद करें, अपनी उन्नति के लिए बैटरी चार्ज करें। ये किस समय के लिए बात बताई, जिस समय मुरली चलाई जा रही थी, बाबा जीवित थे, राम वाली आत्मा थी नहीं यज्ञ में, उस समय तक के लिए ये बात सही थी कि अपना स्वचिंतन करें, वो परचिंतन हो जाता है, वो फिर हो गया परचिंतन। अभी तो अपना चिंतन करना है, अभी मैंने कब, उस समय, हम बाप को याद करें। फिर बोला अच्छा इतना सब कह दिया कि वह हाँ हम बाप को याद करें उसका चिंतन क्यों करें, वह तो जरूर पढ़ते होंगे। हम जब कह रहे हैं कि उसको याद क्यों करें, बच्चों को बता दिया तो उसको याद न करो, टाइम वेस्ट करना हो जाता है, तो आप फिर क्या करने लगे? वह तो जरूर पढ़ते होंगे अपनी
आपकी आत्मा ने, कृष्ण की आत्मा ने ज्ञान तो लिया उसके बाबा से, उसकी स्थान में आ गए।
राम की आत्मा ने,
कृष्ण की आत्मा ने था ना,
हाँ?
बाबा से ज्ञान लिया कि उसके स्थान में आगे थे परमात्मा, तो राम की आत्मा ने ज्ञान कहाँ से लिया?
तो ये की आदि में ही परमात्मा से प्रवेश कर लिए।
हाँ उस टाइम तो ज्ञान तो भागा हुई ज्ञान, उस ज्ञान टाइम तो है नहीं था, गीता पुरानी गीता बड़ी आती थी जो असली ज्ञान था।
अभी दोबारा आके तो ले लिया बेसिक नॉलेज सारी मुरलियों से
पढ़ के, बस
इतने ये कोई कम बात है क्या? उस समय तो अपरिपक्व ज्ञान था और इस समय तो पका हुआ 18 साल का पूरा मिला, पूरी बेसिक नॉलेज
श्री बाबा ने नहीं ये ज्ञान दिया राम क्या
जी, वो तो आदि में ही बीज बो दिया। अभी जो प्रवेश करती है वो तो सभी बच्चों में सर्विस के लिए प्रवेश करती है ना, राम की आत्मा भी सर्विस के लिए प्रवेश करती है, जैसे सब बच्चों में प्रवेश होता है वैसे राम की आत्मा, हाँ राम की आत्मा जो है वो मुकर रस साबित हो जाती है।
जो ज्ञान का बीज पहले बोया गया राम की आत्मा में शुरू में, वही अब उससे काम चल के इच्छा रखते
हैं।
जो बीज राम की आत्मा में शुरू में वो बोया गया
बावन,
तो अब जो
वही अभी तक वही अभी तक ज्ञान में बेसिक नॉलेज में विस्तार को पाता रहा, परिपक्व स्टेज में वो वृक्ष पहुँच गया। जो शुरू में ज्ञान का बीज बोया था वही बीज विस्तार होते 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 सरसब्ज वृक्ष बन गया बेसिक नॉलेज का 69 में 18 जनवरी तक।
अपने आप ही
ऑटोमेटिक ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके परमात्मा ने उसको सरसब्ज किया, माँ के रूप में उसको पोषण दिए। वो नहीं था, वो नहीं था, लेकिन वो वृक्ष तो बढ़ गया ना, वो बीज से जो वृक्ष निकला वो तो विस्तार को पा गया ना, अब वो बीज फिर आ गया 69 में बाबा की सही छोड़ने के बाद। तो बोला वो तो जरूर पढ़ते होंगे, अपनी बैटरी चार्ज करते होंगे, परंतु तुमको अपनी करनी है। किस समय की बात बताई? उस समय की बात बताई। कहा जाता है अपनी घोट तो नशा करो, अपनी आत्मा को जितना हम घोटेंगे, हम ज्योति बिंदु आत्मा है, हम आत्मा है, हम आत्मा है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से सुबह तक, तो हर समय जब बुद्धि में भरा रहेगा कि हम स्टार हैं, ज्योति बिंदु है, तो स्टार ही याद बना रहेगा, देवान खलास। ये देवान खलास होगा तभी एडवांस नॉलेज बुद्धि में बैठेगी।
उस टाइम जी राम की का नाम लिया जा रहा है ना, जब राम की आत्मा ज्ञान में नहीं थी, तो उसका मतलब जी के राम का राम तो था ना अपने कहीं ना कहीं, तो उस टाइम वो राम की आत्मा ऑटोमेटिक उसमें ज्ञान का बीज बढ़ रहा था?
नहीं हाँ। उसमें नहीं बढ़ रहा था, ब्राह्मण परिवार जो है वो सरसब्ज हो रहा था,
हाँ, हो रहा था
बेसिक नॉलेज के रूप में, बेसिक नॉलेज के रूप में जो ब्राह्मण परिवार सरसब्ज हो रहा था उसमें बेसिक नॉलेज कूट कूट कर भर रही थी कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ और सभी ज्योति बिंदु आत्मा हैं, परमात्मा भी ज्योति बिंदु है, ये बेसिक नॉलेज पक्की हो गई। जिनकी जिनकी ये बेसिक नॉलेज पक्की होती जाएगी वो ही एडवांस में आएंगे, आत्मिक स्टेज अगर पक्की नहीं हुई तो एडवांस में नहीं आएंगे।
नहीं, मैं राम की ये ना ये जो राम की आत्मा के बारे में बात बहुत कर रहा है, जिस टाइम बात कर उस टाइम राम की आत्मा ज्ञान में नहीं थी, तो ये बात राम उस बात क्यों करा दी जिसमें?
क्योंकि बाबा तो 3 साल से बोल रहे थे लगातार प्रजापिता शब्द लगाना चाहिए, उससे पहले कभी नहीं बोले।
इस दौरान 2-3 साल के दौरान राम की आत्मा को
उस बुद्धि में विशेष आ गया, बैठ गया। मम्मा ने जब शरीर छोड़ दिया तो बाबा को इन बच्चों से वैराग्य आ गया अंदर से, ये बच्चे जो है बिच्छू चिंदन है सब। वास्तव में तो शेष 7वें यज्ञ में जो थी वो बोधी थी आदि वाली प्रजापिता,
तो राम की आत्मा का कुछ भाषण आती होगी?
बिल्कुल आती होगी, तब तो याद, तब तो याद कर रही है इतना। अनन्य बच्चों को ही बाप याद करेंगे, दूसरों को क्यों याद करेंगे? तो कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े, माने जो जो इस स्टेज में परिपक्व होते जाएंगे बेसिक नॉलेज में कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, उन उन आत्माओं को एडवांस नॉलेज जो है वो मिलेगी। बाप ने कहा है जब तुम सत्व प्रधान थे तो तुम्हारा बहुत ऊंच पद था। ऊंच पद कब था? जब सात्विक स्थिति थी तो तुम्हारा ऊंच पद था, बहुत ऊंच पद था। अब फिर पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो, मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे शब्द सिर्फ बिंदु साबित नहीं होता। मुझे जब कहा जाता है माम एकम याद करो, माम एकम एक को याद करो, तो बिंदु साबित ही नहीं होता कि बिंदु बिंदु तो ढेर सारे हैं, कैसे प्रेग्नोरिटी पता चलेगी? जरूर कोई शरीर के द्वारा है। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो, मंजिल है ना। यह चिंतन करते करते सत्व प्रधान बनेंगे। कौन सा चिंतन करते करते? मुझे याद करते करते। नारायण का ही स्मरण करने से हम नारायण बनेंगे। लो अभी कहा मुझे याद करो, अभी क्या कहा इसको स्मरण करने से नारायण बनेंगे।
नारायण
तो नारायण को याद करने से नारायण बनेंगे। अरे नारायण तो अभी पता ही नहीं चला इस दुनिया में कौन है, तो नारायण को कहां से याद करें? ऐसे साबित हुआ कि वो आत्मा नारायण वाली इस यज्ञ में पहले डिक्लेयर होनी चाहिए। जिस तन में परमात्मा प्रवेश करता है एवरलास्टिंग, जो मुकर्ररत है, जो लक्ष्य सिद्ध प्राप्त करता है, लक्ष्य भेद लेता है। क्या है लक्ष्य? नर से नारायण बनना। तो नारायण का स्मरण करने से हम नारायण बनेंगे। स्मरण करना कोई मुंह से रटने की बात नहीं, स्मरण माना ये, हाँ ये विकृत शब्द है स्मरण, असली शब्द है स्मरण, याद। कहते हैं ना अंतकाल जो नारायण से मिले तो क्या बनेगा? नारायण जैसा बनेगा। तुमको बाप को याद करना है जिससे पाप कटे। अरे नारायण को याद करें कि बाप को याद करें? एक तो कहते हैं मामी कम याद करो, मुझे एक को याद करो, फिर कहते हैं नारायण को याद करना है, कभी कहते हैं स्वर्ग को याद करना है, कभी कहते हैं अपने घर को याद करो, शांति धाम को। तो बहुतों को याद करें या एक को याद करें?
एक ही याद करें।
इसका मतलब वो एक ही है, जो नारायण है वही परमात्मा शिव का साकार रूप है, जो नारायण है वही वास्तव में स्वर्ग का अधिष्ठाता है। उसका शरीर ही उसे याद करने मात्र से ही सुख की अनुभूति होती होगी। सुख माना स्वर्ग। घर की बात आई, घर है शांति धाम, तो शांति की भी अनुभूति जरूर होती होगी। तो तुमको बाप को याद करना है जिससे पाप कटे फिर नारायण बने। कैसे याद करना है? ऐसे को याद करना है जिस पर कोई पाप न चढ़े। मैं उससे यह विनाश कराता हूं जिस पर कोई पाप न चढ़े। इतनी बड़ी शक्ति का विनाश करने का निमित्त बनता है और पाप उस पर कोई नहीं चढ़ता। आदमी एक आदमी को मार देता है और उसमें ये हत्या साबित हो जाती है तो उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है और सारी सृष्टि को नाश करने के विनाश करने के निमित्त बनता है और उस पर कोई पाप नहीं चढ़ता। कारण क्या? विशेषता हुई क्या? खासियत हुई? भाव प्रधान को विश्व रखा
भाव।
कर्म कोई भी हो लेकिन उसमें भाव क्या छुपा हुआ है?
उसकी इंटेंशन बढ़िया।
लक्ष्य क्या है?
सबका भला।
लक्ष्य विश्व कल्याण का है या लक्ष्य शक्ति के विनाश का है?
विश्व कल्याण
का। तो तुमको बाप को याद करना है जिससे पाप कटे हैं फिर नारायण बने। यह नर से नारायण बनने का हाईएस्ट युक्ति बाप सिखाते हैं। ये युक्ति बताई। ये युक्ति नहीं है कि ज्योति बिंदु को याद करें तो नारायण बन जाएंगे। नारायण जैसा बनना है, संपूर्ण सोलह कला संपूर्ण बनना है
तो
नारायण को याद करें, क्योंकि उसमें वो भी सती हुई नारायण को नहीं, जो संगमी भी स्वर्ग का नारायण, जो यहाँ रहते ही रहते मुक्ति जीवन मुक्ति को अनुभव करने वाला है, इस पुराने शरीर के द्वारा ही। तो ये नरसिंह नारायण बनने की हाईएस्ट युक्ति है, हाईएस्ट युक्ति। माना ब्रह्मा के तन में भी कोई याद करते हैं तो हाईएस्ट युक्ति नहीं है। कास्केट में ज्योति बिंदु को याद करते हैं तो उनको हाईएस्ट युक्ति नहीं है। एक नारायण तो नहीं बनेंगे ना, जैसी युक्ति अपनावेंगे हाईएस्ट युक्ति अपनाएंगे तो हाईएस्ट बनेंगे, लोएस्ट युक्ति अपनाएंगे तो लोएस्ट बनेंगे। एक नारायण तो नहीं बनेंगे ना, यह तो सारी डिनास्टी बनती है। फर्स्ट नारायण, सेकंड नारायण, थर्ड नारायण, फोर्थ नारायण, एट्थ नारायण, आठ नारायण, नौ नारायण हो गए, उनकी डिनास्टी हो गई। बाप हाईएस्ट पुरुषार्थ कराएंगे, बीच वाले नारायण को याद करना नहीं सिखाते हैं। हाईएस्ट या पुरुषार्थ करना सिखाते हैं। ये है ही राजयोग की नाली। माने बीच वाले नारायण राजयोग नहीं सिखा सकते, वो राजा नहीं बनाएंगे, वो आधीन बनाएंगे। जो ऊंचते ऊंच विश्वनाथ है, जो ऊंचते ऊंचे नारायण है, वही राजा बनाएगा। खुद राजा बनता भी है और जो भी भांति परिवार के सदस्य हैं उन सबको क्या बनाना सिखाता है, राजा ही बनना सिखाता है, बनाना सिखाता है। तो ये है ही राजयोग की नाले, जो सो भी पूरे विश्व का मालिक बनना है, छोटा मोटा राजा नहीं बनना है, थोड़े में प्रसन्न होने वाला नहीं बन जाना है। क्या करना है, पूरे विश्व का मालिक बनना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना फायदा तो जरूर होगा। एक तो अपने को आत्मा जरूर निश्चय करो, पहली बात तो ये है मुख्य मुद्दा है। अंत में डायरेक्ट बाप से कब सीखेंगे,
हाँ,
जब ज्योति बिंदु आत्मा की प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी। जब तक ज्योति बिंदु आत्मा की प्रैक्टिस पक्की नहीं हुई तब तक एडवांस नॉलेज भी ग्रास्प नहीं कर सकते। ले भी लेंगे